अभी अगली आयत के अंदर आप देखिए कि उसी की मजीद डिस्क्रिप्शन है। अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया आयत 56, वा अकीमुस सलात व आतुस ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, व अती और रसूल, और रसूल की इताअत करो। क्या होगा इससे? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। पीछे जिस बात को इज्तमाही तौर पर कहा गया, यहाँ उसी बात को अब इनफरादी इबादात की सूरत में बयान किया गया। खुलासा यही है, यहाँ असल में मुनाफिकीन से कहा जा रहा है कि देखो, तुम अपने दिल में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं भी रखते, इसके बावजूद तुम्हें नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, ज़कात देनी पड़ेगी, और जब रसूल तुम्हें किसी बात का हुक्म दें तो उसको मानना पड़ेगा। होगा क्या? तुम पर रहम किया जाएगा। हमारे यहाँ अमूमन ये बात मारूफ है कि जी अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह गफूर रहीम है। तो इस आयत ने हमें इस बात पर सोचने पे मजबूर किया कि अल्लाह का रहम इन सारी बातों को करने के बाद होगा, जिसका जिक्र इन दो आयात में हुआ। खुलासा क्या है? कुरान पाक में 3 दफ़ा यह आयत मौजूद है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलखुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, सूरह तौबा आयत 33, फतह 28 और सूरह सफ़ आयत नंबर 9, 33, 28 और 9। इन तीनों में एक ही बात बयान की गई कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसको सारे दीनों पर गालिब कर दे। यहाँ जो है ना, अल्लाह दीन ही कुल्ली ही, तो मुराद क्या है? तर्ज ज़िंदगी, यानी पूरी दुनिया में इस्लाम का तरीका राइज हो जाए, और इससे फिर वो मकसद पूरा हो जाएगा जिसके ऊपर अल्लाह के नबी को भेजा गया। इसके बाद अगर आप देखें तो कुरान पाक में 5 बार, यानी 5 different places पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के जिक्र में, यानी आपको इस दुनिया में भेजा गया, तो साथ ही ये भी बात बता दी कि आप कौन हैं, रहमतुल लिल आलमीन, लोगों की हिदायत के लिए, यानी आपकी नबूवत पूरी नौ इंसानी के लिए थी। जैसे सूरह सबा की आयत 28 में आता है, वमा अरसलना का इल्ला का फतल्लिन्नासि बशीरं व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यालमून, हमने आपको पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नसीर बनाकर भेजा, लेकिन अक्सर लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, वो समझते नहीं है। इसी तरह सूरह अल-अंबिया की आयत 107 में आता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो ये सारी आयतें हमें बताती हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए बनाया गया, ये नहीं है कि ज़मीन के कुछ खित्तों पे इस्लाम हो और कुछ पे ना हो। इसीलिए क़यामत से पहले ये गलबा पूरा होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस काम में हिस्सेदार बना दे। हमारी वजह से इस्लाम की असल जो खूबसूरती है वो लोगों तक आए, और हम इस दीन को अमल करके दूसरों तक पहुँचाएँ। फिर आखिरी आयत इसी मजमून की आयत 57, ला तखसबन्नल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीन फिल अर्दी, इन काफरों के बारे में ये गुमान ना करो कि वो ज़मीन में आजिज कर देंगे। किसको कर देंगे? अल्लाह को आजिज कर देंगे, क्योंकि वमावाहुमुन्नार, उनका ठिकाना आग है, वलबीसल मसीर, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। यानी बज़ाहर हम कुफ़ार की तरक्की को जब देखते हैं तो गलत फहमी का शिकार होने लगते हैं कि शायद नौज़ुबिल्लाह अल्लाह भी इनसे डरता है, या ये अल्लाह ताला को बेबस कर देंगे, और मुसलमानों के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं और इन काफिरों पे नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है, काफिर कुफर के साथ जितनी मर्जी तरक्की कर ले, वो दुनिया की कामयाबी बज़ाहर हासिल कर भी ले, लेकिन असल में उसका ठिकाना जो है वो आग है। यहाँ पर यह मज़मून पूरा हुआ, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत खूबसूरत ख्वाब दिखाया और बताया कि तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे दीन पर अमल और उस अमल के ऊपर फ़ख्र पर है। जितना जल्दी इस काम को करोगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इस काम को आसान करेगा। अब अगली आयत, यानी आयत नंबर 58 में, वो अहकामात जो हमने पीछे पढ़े, उन अहकामात में हमने क्या पढ़ा था? घर के अंदर आने की इजाज़त ली गई थी, बाहर से कोई आता है। अब यहाँ पे इजाज़त लेने की आयात में कुछ बातें वो हैं जो घर के अंदर के लोगों के बारे में। आप देख रहे हैं कि सूरत नूर का नाम नूर है, बीच की मेन थीम आयत अल्लाहु नूरुस समावात है, लेकिन एक बहुत तज़किए वाली आयत गुजरती है, फिर कोई माशरती हुक्म आता है। इससे आपको पता चलेगा कि दीन को कायम करना पड़ेगा। अमली जिंदगी पर जब दीन का अक्स पड़ता है तो तभी अल्लाह के हुक्म से इस्लाम की खूबसूरत किरणें लोगों तक पहुंचती हैं। तब यहाँ सूरत के आखिर में कुछ माशरती और समाजी किस्म के मसाइल की हिदायत है। और आप देखें तो मजामीन को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे एक खूबसूरत सा हार है जिसके बिल्कुल दरमियान में एक हीरा है। क्या अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, पूरी सूरत की आयतें कितनी है? 64। और सूरत आयत नूर का नंबर क्या है? 35। बिल्कुल मिडल बनता है ना ऑलमोस्ट, अगर आप उसका मिडल करके देखें। और उसके एक तरफ भी छोटे छोटे मोती हैं और दूसरी तरफ भी हैं। पिछले हिस्से के मोती हम पढ़ चुके हैं जिसमें माशरते अहकाम थे, घर में आने की बातें थी, दूसरी चीज़ें थी। अब आप कह लें कि उस लड़ी के दूसरी तरफ की डोरी चल रही है, ताकि आप ये ना सोचें कि तकरार क्यों है और बार बार ऐसा क्यों आता है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अय्मानुकुम, चाहिए कि इजाज़त ले लिया करे तुम्हारे गुलाम और लौंडियाँ। और कौन? वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम, वो बच्चे भी जो अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुँचे। कब इजाज़त लें? सलास मर्रातिन, तीन औकात में। तीन वक्त खलबत के होते हैं, प्राइवेसी के होते हैं। उसमें घर के अंदर रहने वाले लोग जिसमें गुलाम, बांदियाँ, बच्चे हैं, ये भी किसी की तन्हाई में मुखिल ना हो। वो कौन से तीन वक्त हैं? नंबर एक, मिन कबली सलातिल फजर, फजर की नमाज से पहले। अमूमन देखिए कि ये वो वक्त होता है कि जब इंसान उठता है, तहारत हासिल करता है। ज़ाहिर है कि जो लोग फितरत के साथ जीते हैं वो इस वक्त गुसल भी लेते हैं, क्योंकि सुबह एक नई सुबह का आगाज़ इंसान कसल मंदी और सुस्ती से करेगा तो उसको पूरे दिन सुस्ती लगेगी। तो ऐसे वक्त में अब आप सोच लें कि घर वो नहीं थे जो आज हमारे यहाँ अटैच बात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का अपना कमरा, अपनी चीज़ें हैं। उस दौर में भी जैसा कि बताया कि घरों के बाहर दरवाजे भी नहीं थे, और आज भी इवन इस दुनिया में कच्ची बस्तियाँ और गांव देहात और इस तरह के सहराई इलाकों में लोग एक झोंपड़ी में रहते हैं, जिस तरह कैंपिंग होती है। तो फिर उस वक़्त के लिए ये सारी चीज़ें बता दी कि जिस हद तक भी तुम एहतमाम कर सको ऐसे वक्तों में बिला रोक टोक किसी के पास भी ना जाओ। पहला वक्त फजर से पहले, दूसरा वहीन तदाउन सियाबकुम मिन ज़हीरती, जोहर का वक्त जबकि तुम, यानी दोपहर का वक्त जबकि तुम कपड़े उतार देते हो। सियाब जो है ना सौब की जमा, और सौब कहते हैं वो लंबा चोगा जो अरब लोग बाहर आते हुए पहनते थे। जैसे हम औरतें तो अबाया पहनती हैं ना, तो मर्द भी एक लंबा सा चोगा पहनते हैं, आपने देखा होगा। तो उस सौब को अमूमन गर्मी की वजह से जब घर जाते थे तो उतार देते थे। जैसे हमारे यहाँ अमूमन मर्दों ने बनियान के ऊपर कुर्ता पहनना होता है, अब बहुत गर्मी है बाहर से आए तो वो ऊपर से कुर्ता उतार दिया, कपड़े थोड़े हल्के कर लिए। और ज़हीरा का लफ्ज़ समझ लीजिए, जोहर, ये जो नमाज है ना जोहर, असल इसके रूट में क्या है? जहरा, जोए हारा। जहर कहते हैं पीठ को, पुश्त। जोहर के वक्त को जोहर क्यों कहते हैं? कि इस वक्त सूरज पीठ फेर जाता है, यानी सूरज अब पलटना शुरू हो गया, उरूज पे आया तो अब चला गया। और अमूमन ये वो वक्त होता है जिस वक्त कैलूला किया जाता है, छोटा सा नैप लेना। और तीसरा वक्त वमिम बादी सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद। ये कौन सा वक्त है? जब अमूमन इंसान अपने कमरे में चला जाता है और उस वक्त फिर कोई भी ऐसा प्राइवेट काम जिस जो इंसान दूसरों के सामने नहीं कर सकता, तो इस वक्त में इहतमाल होता है कि ऐसा कोई काम होगा। तो फरमाया सलास औरात इल्लकुम, ये तीन तुम्हारे पर्दे के वक्त हैं। सलास देखिए तीन, औरात जो है ना औरतुन की जमा है, औरत कहते हैं और से, किसी ऐसी चीज जिसका नुमाया करना मना हो। सुराख को कहते हैं बुनियादी तौर पे, औरत लफ्ज़ की ज़रा आप वजाहत समझ लें, सुराख को कहते हैं। अब सुराख होता है तो उसको भी छुपाया जाता है ना, इसी तरह औरत कहते हैं खलल की चीज़ जिसे दिखाना नापसंदीदा हो, कोई भी ऐसी हालत जिसका देखा जाना पसंदीदा ना हो। इसी से लफ्ज़ है अव्वरा, आइन वाव, वाव पे शद और ज़बर और रा काना शख्स, यानी जिसकी एक आंख ना हो। इसी तरह औरत कहते हैं जहाँ से हमले का डर हो, ये मानी आज के दौर में बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि आज वेस्ट ने मुसलमानों पे जो हमले किए ना उसमें एक बहुत बुनियादी हदफ औरत को बनाया है। मुसलमान औरत को बुनियाद बनाकर उसको कॉम्प्लेक्स में डाला और इक्वेलिटी का खूबसूरत नारा देकर इस्लामी कल्चर पे हमला किया। तो गोया कि यहाँ औरत का लफ्ज़ वुमेन के लिए नहीं है, समझिएगा, गलत तफसीर हो जाएगी अगर हम इसको नहीं समझेंगे, बल्कि इससे मुराद क्या है कि वो वक्त जिस वक्त को इंसान जाहिर नहीं करना चाहता, तो कहा कि ये तीन पर्दे के वक्त हैं। हर बंदा घर में रिलैक्स होना चाहता है, हर वक्त आप साफ सुथरे कपड़ों में भी नहीं होते, बाज़ दफ़ा पुराने कपड़ों में होते हैं, बाज़ दफ़ा आप ये महसूस करते हैं कि चले इस वक्त किसने आना है, रिलैक्स हो जाते हैं, कोई बाल खोल देता है, कोई बाल बांध लेता है। घर जाकर एकदम खुशी का जो एहसास होता है उसकी बड़ी वजह ये होती है कि फालतू बोझ से खाली हो जाता है। और दूसरा एक और भी होता है कि बाहर हम जब आते हैं तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ तौर पर कॉन्शियस रहते हैं कि कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, लेकिन घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हान तआला ने ये बताकर कि ये तीन पर्दे के वक्त हैं तुम्हारे लिए, ये तीन बातें हैं, लिहाजा तुम ऐसी चीज़ों के वक्त में क्या करो कि किसी के घर में आते जाते वक्त तुम इजाज़त लो, ऐसे ही मुंह उठा कर ना चल पड़ो उनके घर में। वरना इसके अलावा अब ये तीन वक्त जब गुजर गए, लैसा अलैकुम वला अलैहिम, ना तुम पर और ना उन पर। तुम कौन है? तुम मुसलमान। और अलैहिम कौन है? यही तीन लोग, बच्चे, गुलाम और लौंडियाँ। इनको कोई गुनाह नहीं कि जुनाहुन गुनाह के बाद अहुन्ना इसके बाद, क्योंकि तवाफ होना अलैकुम बादुकुम अलाबाद, एक दूसरे के पास फिरते फिराते ही रहते हो। ये इस्लाम का हुसन है। पाबंदी बरए पाबंदी नहीं लगाता, बस कह दिया ना मैंने कह दिया, ये अंदाज नहीं है। जिस वक्त ज़रूरत है, अब ज़ाहिर है घर में मुलाजिम भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनको इस तरह की ज़रूरत पड़ती रहती है, छोटी छोटी बात पे तो माँ बाप के पास भागे आते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कैसे वक्त में फिर अगर वो आते हैं फिर इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान केयरफुल भी होता है और अमूमन उस वक्त में फिर काम भी करता है कोई ना कोई ऐसा कि जिससे इंसान यानी बामकसद एक इंसान दिखता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर इसके बाद वो अगर आ जाएँ तो कोई हरज की बात नहीं है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करते हैं तुम्हारे लिए आयतें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानने और हिकमत वाला है। यहाँ देखिए आना क्या चाहिए था लफ्ज़ कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल हुक्म, अल्लाह तुम्हारे लिए हुक्म साबित करता है। हुक्म के लफ्ज़ को यहाँ आयत कहा गया, क्यों? इसलिए कि आयत क्या होती है? निशानी। और निशानी होती है दलील। मतलब यह है कि ये ऐसी निशानी है कि ऐसा खूबसूरत हुक्म अल्लाह के सिवा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, कोई इंसान इतनी दूर तक सोच ही नहीं सकता। आज की सिविलाइज्ड नेशंस में, उनके पूरे पूरे कल्चर में ऐसा कोई हुक्म ही नहीं देखता। वजह क्या है? अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की अलीमी और हकीमी हमें क्या बताती है। असल बात क्या है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि माँ बाप का पर्दा बच्चों के सामने ना खुले। देखिए एक फितरत का असूल याद रखिए, जो चीज़ आपसे जितनी दूर होती है ना आप उतना उससे मरूब होते हैं, करीब आने से कुछ ना कुछ बेतकल्फी हो ही जाती है। माँ बाप के साथ औलाद का ताल्लुक जो है ये इज्जत का ताल्लुक होता है। बेतकल्फी अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन सर पे चढ़ने वाली बात अच्छी नहीं होती। तो जिस तरह नमाज रोजे का हुक्म दिया, इसी तरह आप देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहकर ये हुक्म भी दे दिया कि अपने बच्चों को ट्रेन करो। छोटे बच्चों को अमूमन आदत होती है आधी रात को पिलो पकड़ा हुआ, अम्मी अम्मी मैं आ जाऊँ, अब्बू आ जाऊँ, और उनको फिर सोना भी बीच में ऐसे आड़े बन के होता है कि वो बिल्कुल जैसे एक बदला लेते हैं ना अपने माँ बाप से। इनसिक्योरिटी की आदत है, तो शुरू से आदत डालें। देखिए घर के अंदर अल्लाह ताला ने वसत रखी भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घरों में ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही एक एक कमरे का घर है, तो हत्तुल बसा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के भी बताओ कि आपका कौन सा रूम है, उनका भी कौन सा रूम है। और बजाय इसके कि क्योंस बर्पा किया जाए, बस कह दिया जाए ये आपकी जगह। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बच्चों को पता है अम्मी अबू नहीं जाते, हम जाते हैं, तो हर चीज़ वो समझते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला चाहते हैं कि हया कायम रहे। ये हुक्म बच्चों की सोच की तहारत के लिए और वालदैन की इज्जत के मामले में। और बाज़ दफ़ा हालात ऐसे बिगड़ने लगते हैं कि माँ बाप बच्चों की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर ऐसी हरकतें बाज़ दफ़ा करते हैं आपस में कि जो बच्चों के लिए एक्साइटिंग होती हैं। फिर ना सिर्फ ये कि स्कूलों में जाके वो उसका जिक्र करते हैं बल्कि उनको प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करते हैं। तो इस्लाम चाहता है कि बच्चे बच्चे ही रहे, उनका बचपन ना छीने। वक्त से पहले उनको कोई ऐसी चीज़ बता देना ये जुल्म होता है, तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से बचते हुए इंसान अपने ऊपर रहे। जिस तरह से छोटे बच्चों को हुक्म था तो बड़ों को भी ऐसे ही है। आयत 59, वइज़ा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुम, और जब तुम्हारे बच्चे बलूगत की उम्र को पहुंच जाएं, फलयस्ताज़िनु कमस्ताज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तो चाहिए कि इजाज़त लें वो भी उसी तरह जैसे कि उनसे पहले के लोग लेते थे। कौन है पहले के लोग? बड़े बच्चे। यानी अब एक छोटा बेबी है वो तो माँ बाप के साथ सोता है, ठीक है, लेकिन अब जरा सी उसमें उम्र बढ़ती जा रही है, थोड़े बड़े होने लग गए, तो उनको भी इजाज़त लेनी चाहिए। और इसी तरह बच्चे बड़े हो जाएं जब खुद भी, तो उनको भी एक दूसरे के कमरे में ऐसे उठ के नहीं आना, जैसे भाई हैं तो बहनों के कमरे में आ जाएं, या बहनें उठ के जवान भाई के कमरे में चली जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कमूमी हुक्म है, पीछे डिटेल गुजर चुकी है 27 में। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला। सच बताएं कि इतनी गहरी बातें कोई और बता सकता था अगर अल्लाह सुब्हान ताला हमें ये बातें कुरान में ना बताते। इसी से कुरान पढ़ने का फ़ायदा देखें कि जब बच्चे बचपन से ही कुरान सीख जाते हैं, तर्जुमे समझने लगते हैं, उनके जहनों में क्वेश्चन ही नहीं आता। उनको खुद पता है कि हमारी क्या लिमिट्स हैं और किस तरह से हम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जिस तरह के लाइफस्टाइल हो रहे हैं, इससे हया जो है वो ख़त्म होती भी दिखती है। तो ये आयत तो आप कह लें कि वो हार की लड़ी का एक दूसरा हिस्सा थी आयत इस्तेज़ान के बदन में। अब अगली आयत में जो पीछे औरतों के पर्दे की बात गुजर गई, जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों को कह दिया कि अपनी जीनत को ना जाहिर करो, अब उसी के दर्जे की एक दूसरी लड़ी दूसरी तरफ चल रही आयत 60 में। वल कवाइद मिनन निसा इल्लाति ला यरजून निकाहन, और घरों में बैठ रहने वाली औरतें जो अब निकाह की उम्मीदवार ना हो। हाईलाइट कीजिएगा, वल कवाइद कायदतुन की जमा है, काफ आइन दाल क्या था, कायदा बैठना। ये जो हम कहते हैं ना कायदा, बच्चे को कायदा पढ़ाना है, वो भी यही लफ्ज़ है, बुनियाद को कहते हैं बेसिकली। कवायद वो औरतें जो बुढ़ापे की वजह से बस एक ही जगह बैठी रहे, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में इंसान को अच्छा लगता है कि ज़्यादा बैठे ही रहें। फितरी सी बात है, कमज़ोरियाँ भी हैं, बाज़ दफ़ा घुटनों की दर्दें हैं और उम्र का तकाज़ा है। तो वो औरतें जो दुनिया में अब घूमने फिरने से ज़्यादा घरों में बैठना पसंद करती हैं, और दूसरी बात यह कि ला यरजूना निकाहन, निकाह की उम्मीदवार नहीं रही, इससे क्या मुराद है? बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रही? नहीं, ये मतलब नहीं है। क्योंकि एक बाज़ दफ़ा औरतें 20-25 साल की उम्र में ऑपरेशन अगर हो जाता है या कराती हैं, तो बच्चे तो वो भी नहीं पैदा करती, तो क्या वो इस हुक्म में आएंगी? यहाँ मुराद है कि उनके अंदर से वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गई जो किसी को भी निकाह की तरफ माइल करें। अपनी भी निगाह झुकी हुई है, सीधी सादी नमाज रोजे में तवज्जो देने वाली, जैसी घर में थी उठ के बाहर चल पड़ी। ना निकलते हुए उसको क्रीम चाहिए थी, ना सुरमा चाहिए था, ना कोई उसको फाउंडेशन चाहिए था, सीधे सादे कपड़ों में बैठ गई, जिसको बुढ़िया कहते हैं, मुअम्मर उम्र जो होती है, जिस उम्र में अमूमन निकाह की ख्वाहिश नहीं होती। तो फिर फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन, अब इन पर कोई गुनाह नहीं है। किस बात का? अय्यदान सियाबहुन्ना, कि वो अपने इजाफी कपड़े उतार दें। यहां भी देखिए सियाब सौब की जमा, तो कौन से कपड़े उतारेंगी? जो जवानी में पहनती थी। कितनी बड़ी दलील है इस बात की कि औरत जवानी में कुछ ऐसे कपड़े पहनती है बाहर जाते हुए, जो बुढ़ापे में अगर उतार के सीधे साधे घर के ही कपड़े चादर में ही हो, तो फिर कोई हर्ज की बात। जो औरत जवानी में कुछ नहीं पहनती, जिस तरह थी उठा के बैग अपना शोल्डर पे रखा और चाबी ली, सेलफोन लिया, घुमाती हुई गाड़ी में चली गई, वो बूढ़े होके क्या उतारेगी? सौब ऊपर के कपड़े को कहते हैं, सिला हुआ कपड़ा गारमेंट्स के मानों में होता है। ये भी एक इनडायरेक्ट दलील है औरत के पर्दे की, कि सिंपल से इस्लाम का मिजाज समझें कि जिन कपड़ों में आप घर में बैठी हुई हैं या किसी भी मुकीम जगह पे बैठी हैं, आप उनमें उठ के बाहर नहीं जा सकती, आपको कुछ ना कुछ ऊपर पहन नहीं पड़ेगा। तो वो औरतें जो सारी ज़िंदगी पहनती रहीं, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई हैं, अब उनको बस भारी कपड़े भी चुभते हैं, उठा नहीं सकती, कंधों में दर्द है, कपड़े लपेटे नहीं जाते, हाथ कांपने लगते हैं, सही तरह से अबाया पहन ही नहीं पा रही, या निकाब उनके सर पे से खिसक रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अगर वो ऊपर के कपड़े उतार दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। शर्त एक है, गैर मुतबर रिजातिम बिजीना, बशर्ते के जीनत की नुमाइश करने वालियां ना हो। अब बताइए जीनत के लफ्ज को भी को समझने की जरूरत है? कितनी डिटेल से हमने समझा, कपड़ों में जीनत है, मेकअप में जीनत है, ज्वेलरी में जीनत है, मेकअप और चेहरे के ऊपर जो कुछ भी लगाते हैं उसमें जीनत है, चेहरा खुद जीनत वाली चीज़ है। तो सीधी सादियाँ, कोई नुमाइश नहीं, ना उनके दिल में यह ख्वाहिश है कि लोग कहें कि क्या पहनना है, कैसी लग रही हैं, बस वो घर में बाहर शादी ब्याह में हर जगह एक ही जैसी हैं। वो ये नहीं सोचती कि अच्छा पहले सुरख पहनते थे, अब ऑफ वाइट पहन लेते हैं, अब वाइट कपड़े पहन लें, अब लाइट कलर्स पहनते हैं, चलो मैचिंग या लाइट ही कर लेते हैं, ये नहीं मतलब, बिल्कुल किसी किस्म की खुद नुमाई कौन में जज्बा ही नहीं है। तो फिर वो उतार दें, नो प्रॉब्लम, इस्लाम बोझ में नहीं डालता। लेकिन वहीं यस्ताफिफ ना, फिर भी अगर वो इस मामले में बच जाएं, किससे बच जाएं भला? ये एक्स्ट्रा कपड़े उतारने से, यानी ना ही उतारें, एहतियात ही कर लें तो खैरुल्लहुन्ना, ये तो इनके लिए और भी अच्छा है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। कैसे अच्छा है? देखिए, घर में जवान बच्चियां भी होती हैं, बहुएं भी होती हैं। जब बूढ़ी नानी दादी या सास, जिसके अंदर अब कोई अट्रैक्शन भी नहीं रही, सन रसीदा हो चुकी है, अगर वो घर से बाहर निकलते वक्त अबाया पहनती हैं, स्कार्फ लेती हैं, नकाब करती हैं, तो क्या यंग बच्चियां जो घर की हैं, बहुएं, बेटियां, पोतियां, नवासियां, उनको एक लम्हे के लिए सोच नहीं मिलेगी कि अम्मा जी तो इस उम्र में ये नहीं छोड़ रही, तो हमारा क्या हाल है? एक किस्म की ये खैर इस सूरत में उनके लिए फैलेगी कि नई नस्ल उनको फिर कॉपी करेगी। फिर दूसरी बात है कि बाज़ दफ़ा जो पोथियाँ होती हैं, ख़ासतौर पर उन्होंने नानी और दादियों की जवानी नहीं देखी होती, अब उन्होंने अपनी दादी को बुढ़ापे में ही देखा, और देखा कि बूढ़ी दादी जो हैं वो तो पर्दा नहीं करती, वो बस ऐसे ही उठ के चल पड़ती हैं, तो वो क्या सोचेंगी, पर्दा तो करना ही नहीं चाहिए, मेरी तो दादी नहीं करती थी। उनको क्या पता कि पहले ये बेचारी काला बुरका पहनती थी, ऊपर की निकाब अलग होती थी, नीचे का बुरका अलग होता था, तो उनके जहन में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि हमारे घरों में तो कोई पर्दा नहीं करता था। अब मुझे बताइए, क्या इस आयत का कोई मसला ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा किसी को? सिंपल, क्लियर एंड प्लेन। अगर ये आयत ना आती तो हम कह सकते थे कि अल्लाह ने औरतों, बूढ़ी औरतों, जरा उम्र बढ़ने वाली औरतों के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। इतना क्लियर हुक्म है, इसके बावजूद आज हमारा क्या हाल है? खालिबन इब्ने मसूद के बारे में आता है कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा जी को देखा, मोटी चादरों में, अबाए में और दुपट्टों में, जैसे भी एक कपड़ों में पहले दौर में औरतें होती थी, खासतौर पर आपने देखा होगा जिसको कहते थे टोपी वाला बुरका, बहुत भारी होता, कई गज का होता था, गोल ऊपर टोपी, और उसके इर्द गिर्द इतना घूमा कि पता ही नहीं चलता अंदर जवान है, मोटी है, पतली है, कैसी है। तो उन्होंने देखा एक औरत को कि ये इतने कपड़ों में छुपी हुई है, तो वो उनको देखकर यही आयत पढ़ते हैं कि अम्मा जी, क्या आपने कुरान का ये हुक्म नहीं पढ़ा, केवल कवायद मिनन निसाई लाति ला यरजुन निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदान सियाबहुन गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। तो उसका जवाब अम्मा जी ने क्या दिया होगा? कहती, हाँ बेटा, मैंने ये तो पढ़ा है, तू ये बता के तूने उससे अगला हिस्सा नहीं पढ़ा कि वही अस्ताफिफ न खैरुल्लहुन्ना। अब जो अम्मा जी ये तर्जुमा ही नहीं जानती, वो क्या करेंगी? देखिए, जवान शौहर के साथ आप बैठे हैं तो आप भी जवान हैं, ठीक है, समझे? अब एक औरत जवान है और अपने शौहर की खुशी के लिए पर्दा नहीं करती है, सोहन जो औरतों का बिल्कुल खुद साख्ता एक उजर है, तो एक बूढ़ी औरत एक बूढ़े मर्द के साथ बैठ जाएगी तो क्या फर्क पड़ा? अगर आप बूढ़ी हुई हैं तो आपका मर्द भी तो बूढ़ा हुआ ना, अगर आप जवान हैं तो आपका मर्द भी जवान है, एक अमूमी सी बात है ना। तो अहकामात कब बदलते हैं, किस तरह बदलते हैं? जब हम उनकी असल को देखते हैं। इस्लाम बहुत खूबसूरत तरीके से यहां हमें इस बात का पैगाम देता है कि उम्र के साथ साथ इंसान को आगे की फिक्र लग जानी चाहिए। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि ये सब कुछ वैसे ही छूट जाएगा। हया की देखिए कि इस्लाम में कितनी ज्यादा अहमियत है। आज हालात पता क्या है, इल्ला माशाल्लाह, हर जगह नहीं भी ऐसे होंगे, जवान बेटियां स्कार्फ या हिजाब पहनती हैं ना तो बूढ़ी नानियां दादियां खींचती हैं कि रहने दो, अब तुम यहां हिजाब पहन के जाओगी तो रिश्ता नहीं होगा, और बसों में और ट्रेनों में लोग तंग करेंगे और तुम्हें मुसलमान समझेंगे। यकीन करें, बच्चियों की बात है कि अगर नानियां दादियां हमें मना करें तो हम क्या करें? फिर बस चीज़ें इसके ऊपर एक दो और भी हैं। किसी ने अदा से कहा कि मेरे ऊपर तो पर्दा ही नहीं है। भाई क्यों पर्दा नहीं? क्योंकि मेरा तो ऑपरेशन हो गया और मेरी तो यूट्रस रिमूव हो गई है। तो अल्लाह तो कहते हैं कि जो औरतें हज शादी की रगबत नहीं देती, तो जवाब क्या है इसका? हर एक को लिख के बता देंगे, हर मर्द को बताएंगे कि मेरे बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं हो। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की बातें हैं जो सिखाता है। सूरत अल अहज़ाब में हम पढ़ेंगे, युद्नीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, हर औरत घर से बाहर निकलते वक्त जिलबाब पहनेगी, चाहे उसको अबाय की सूरत में पहन रही है, उसको ढीली चादर करके निकाब की सूरत में पहन रही है, सर से पांव तक छुपती है। बूढ़ी औरत अगर उसके अंदर कुछ कमी कर लेती है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और लफ्ज देखिए, मुतबर्रिजात, मुतबर्रिजात उनकी जमा है, बुर्ज से है, तबर्रुज का लफ्ज, नुमाया करना, इजहार नुमाइश, बारिज उस खुली कश्ती या जहाज को कहते हैं जिस पर छत ना हो, बिल्कुल खुली कश्तियां जो होती हैं। इसी तरह औरत के लिए जब ये लफ्ज आता है तो वो औरत जो के मर्दों के सामने अपने हुसन और आरायश का इजहार करे। अच्छा आप सोचिए कि अल्लाह ने औरत को इस उम्र में थोड़ा सा इन चीज़ों से हटाकर सादगी पे क्यों डाल दिया? कोई इसकी वजह समझ आती है? एक और भी, एक जवान लड़की है, औरत है, वो पूरे हुसन में निकली, 20 साल की है। 25 से 30 साल के मर्दों के दिल पे बिजलियां गिराएगी ना, हो सकता संभल जाए। एक 80 साल की बुढ़िया जब पैन ओढ़ के निकलती है तो 90 साल के बाबा जी के दिल पे बिजलियां गिरेंगी, तो उनका तो दिल पहले ही कमजोर है, वो तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। सच है कि नहीं? आप कभी देखा करें, बूढ़े भी जब अपने हिसाब से सज सुज के जा रहे होते हैं तो वो भी तो फिर अपने आप को किसी अपने ही जैसों में देख रहे होते हैं ना। और अल्लाह रहम करे कि जहां से एग्रीगेशन होगी, बूढ़े जरूर अंदर आते हैं प्यार देने, तो वो ऐसी बूढ़ियों के देखने आते हैं ना कि आज देखो वो क्या पहन के आई है। तो ये तो अंदर की बातें हैं, कोई किसी को नहीं समझा सकता, यकीन करें। मैं सोचती हूँ कि ये अहकाम पढ़ने के बाद भी अगर लोग पूछते हैं सवालात, तो वो सिर्फ बस वो अपने अंदर के गिल्ट को दूर करते हैं। देखिए लफ्ज ना मुतबरे, अब आप बैठे हैं, कोई बहुत खूबसूरत कपड़े पहन के अंदर आ जाए तो भी हम उसको मुड़ के देखेंगे, और कोई अंदर आए और ऐसे छन छन की कोई बिजली, कोई घंटी की आवाज आए फिर भी मुड़ के देखेंगे, खुशबू का झोंका आएगा फिर भी देखें। मुतबर्री जात में हर चीज आती है, माइल करना, थोड़ा सा ट्रैक करवाना। जी आप
जी, मैं ये कहना चाहती थी कि आज के दौर में तो लगता है कि ज़ईफ़ कम और बूढ़े ज्यादा,
ज़ईफ़ कम और बूढ़े ज्यादा, सही बात है। क्योंकि आजकल वो बाल भी काले हो गए, जुरियों एंटी रिंकल क्रीम भी पहन ली, घुटने भी नए लगवा लिए। वो किसी ने मुझे बताया, पता नहीं कोई बात थी, तो कहते ये फिर सही नहीं हो गई है, क्यों भाई, इसने भी अपने घुटनों का इलाज करा लिया, तो घुटने नए लग गए, ऐसा ऐसा वो और भी चीजें नहीं लग जाएंगी। बूढ़ों को छोड़ें, अपनी फिक्र करें, बुढ़ापे में कौन पहनेगा जो जवानी में पहनता था। आदत ना पड़ी हो ना जवानी में, तो बुढ़ापे में तो ये आपको लगेगा, जिसको क्या कहना चाहिए, गले की नकेल लगेगी, नामुमकिन लगेगी ये चीज, के ये हो ही नहीं सकता। मैं इसको पता कैसे सोचती हूँ, सारी जिंदगी किसी ने नहीं पहना ऐसा जिसको आप कह सकते हैं अपने आप को छुपाना। एक बच्ची 15 साल की उम्र में पर्दे का मौजू सुनती है, हिजाब सुनती है, फिर वो कर लेती है। अल्लाह जिंदगी दे 15 से लेके 60 साल तक भी आपके पास अभी काफी साल है, फिर ही आप इस पर्दे पे कायम रहेंगे ना। कोई 70-80 साल का बंदा बंदी या जो भी इन हुक्मों पे अमल करे, पता नहीं कितने दिन है कि नहीं है। थोड़े वक्त में ज्यादा फायदा, थोड़े से साल ये काम करके बहुत सारे सालों का सवाब ले लेंगे। और ऐसे लोगों को हम जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तो बंदे की शख्सियत ही बदल देता है। सारी जिंदगी वो इन चीजों में नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह ने कुरान सिखाया तो उन्होंने कहा मैं इस पे अमल क्यों ना करूं। सहाबा किराम की ये आदत होती थी। अब आप कहेंगे अच्छा बुढ़ापे में पर्दा कर लो, फिर तो लोग हमें और भी बातें करेंगे, तो लोग तो पहले भी हमसे खुश नहीं है। सहाबा इस चीज पे मुंतजिर थे कि अल्लाह का कोई हुक्म आए और हम उसको अल्लाह के लिए माने। बहरहाल अब अगली आयत 61 में भी खाने पीने की बातें हैं, जो कि पीछे भी गुजर चुकी हैं। अब इसको भी हार की लड़ी का दूसरा सिरा सोचिए, पढ़ के इसको इकट्ठा इसकी शान नज़ुल पे बात करेंगे। आयत 61, लैसा अलल आमा हरज, किसी अंधे पर कोई तंगी नहीं। देखिए हरज कांटे को कहते हैं अरबी जुबान में, सूरत अल आराफ में इसी लफ्ज में भी आता है ये, ठीक है। फिर हरज से मुराद कांटा है, तो तंगी भी हो गई, तंगी है तो तंगी से गुना भी हो गया, पकड़ से के मानों में। यहाँ इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि अगर किसी खानदान, घर या बिरादरी में कोई माजूर शख्स हो जो माजूरी के सबब अपनी आजाद मुआश का अहल ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत का क्या हुक्म है। रिवायात में इन आयतों पर आता है कि जब सहाबा कराम जिहाद पे जाते थे तो वो लोग जो बेचारे हैंडीकैप्ड थे, चल फिर नहीं सकते थे, उनको अपने घरों की चाबियां दे जाते थे कि चलो भाई तुम जा नहीं रहे तो तुम पीछे से हमारे घरों की हिफाजत करो। अब जाहिर है जब उनके घरों में रहते थे तो पीछे से खाने का वक्त आता तो खाना पड़ता ना, भूख लगती, इजाजत थी खाने को। कुछ लोग तकवा के नाम पर इतने केयरफुल थे कि उन्होंने दूसरों के घरों से खाया ही ना। जब साथी वापस आए जिहाद से होकर तो देखा तो वो इतने दुबले पतले हो गए, कहा भाई आपको क्या हुआ, तो कहा कि मैंने आपके घर से खाना मुनासिब नहीं समझा। तो उस पर आयत उतरी थी कि ला हरज, कूतेला ये मौत खा सकते हो, तुम्हें अगर किसी ने इजाजत दी है कि तुम घर में रह रहे हो सो रहे हो तो कोई हरज की बात नहीं, तुम आमा हो, हरज नहीं है। वला अलल आरज ही हरज, और ना किसी लंगड़े पर कोई हरज है, पकड़ के मानों में बेसिकली। वला अलल मरीद ही हरज, और ना मरीज पर, क्योंकि इसी किस्म के लोग ही जिहाद से रुकते थे। जरा हम अपने ऊपर लें, उस दौर में जिहाद से कौन पीछे रहता था, लंगड़ा, अंधा और मरीज। ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے اوپر اس بارے میں کوئی تنگی ہے. کس بات میں تنگی ہے؟ ان تاکلو، کہ تم کھاؤ. اتنا خوبصورت دین ہے کہ کھانے کی باتیں بھی عبادت بنا کر قرآن میں پیش کر دیں. کہاں سے کھاؤ؟ من بیوتکم، نمبر ایک اپنے گھروں سے، بیت کی جمع. آپ اپنے گھر سے کھا سکتی ہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. او بیوت آبائکم، باپوں کے گھر سے کھا سکتے ہیں. او بیوت امہاتکم، ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم، بہنوں کے گھروں سے. او بیوت عمامکم، چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت عماتکم، اور اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم، ماموؤں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم، اور اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھا سکتے ہو. کتنا پیارا دین ہے. پہلے تو دیکھیں اس میں رشتوں کی لسٹ ہے، آپ ادھر سے سارے رشتے یاد کریں، چچا کو کیا کہتے ہیں، پھوپھو کو کیا کہتے ہیں، ہر ممکن رشتہ موجود ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مناسب طریقے سے انسان جیسے کسی کے سامنے کھاتا ہے، اس کے پیچھے سے بھی کھا سکتا ہے. آپ اب کہیں گئے رہنے اپنے ماموں کے گھر، تو صبح وہ سب سو رہے تھے، آپ کو پیاس لگی تھی، اور آپ ڈور نوک کر رہے ہیں، میں ممانی میں پانی پی لوں، ماموں میں وہ سیب کھا لوں، تو ماموں نے کیا کہنا ہے؟ تو کھا لو. اس سے محبت بڑھتی ہے طریقے سے. اب یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ ان کے لیے کچھ بچے ہی نہ. معروف کام کرو، اچھے کام کرو، ٹھیک طریقے سے کرو. اور کس کے گھر سے کھا سکتے ہو؟ او ما ملکتم مفاتیحہ، یا وہ جن کے گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو. مفتاحن کی جمع مفاتیحہ. او صدیقکم، اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو. کوئی کارخانہ ہو، اس کا مالک ہے، اس کی چابیاں کسی کو دی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیس علیکم جناحن، کوئی گناہ نہیں ہے. ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ. یہ کیا بات ہے؟ یہ عورتوں اور مردوں کے مل کر کھانے کی بات ہے. تاکلوا، مذکر کا صیغہ. بعض ظالموں نے ان آیتوں کو مکس گیدرنگز کے حق میں پیش کر دیا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے سارے مل کے کھاؤ، اور میک اپ بھی کر لینا، اور سج بھی جانا، اور گول ٹیبل پہ بھی بیٹھنا، چاروں طرف سے ایک دوسرے کو دیکھو. یہ ظلم ہے. مراد کیا ہے؟ اصل میں ان سب کے پیچھے کچھ مت ہیں. کچھ لوگ تھے جو بیچارے اندھے تھے، عرب لوگ ایک ہی تھال میں کھاتے تھے. اب کچھ اندھے تھے، وہ اس غم کے ماترے سے وہاں بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے کہ پتہ نہیں ہم اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے دوسروں کا حصہ بھی کھا لیں، اپنے آگے سے کھانے کی وجہ دوسروں کے آگے سے کھا لیں. یعنی تقوی اتنا تھا کہ کہیں دوسرے کا نہ کھا لیں. لہٰذا یہ آیتیں اتری کہ کچھ نہیں ہوتا، تم کھا لو، تمہیں نہیں دکھ رہا جو سامنے کھا لو. کوئی کہتا تھا اگر میں کھاؤں گا تو میرے آگے سے گرے گا، شاید دوسروں کو یہ دیکھ کے برا لگے. تو یہ عرب کلچر کے ناطے سے کہا کہ اکیلے کھاؤ، مل کے کھاؤ. مطلب یہ کہ جب سب کے سامنے ان رشتوں میں کہا گیا سب مل کے بیٹھے ہیں تب بھی کھا لو، کبھی اکیلے میں بھوک لگی ہے تو کھا لو، بتا دینا بعد میں کہ بھی میں نے یہ کھایا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس سے مراد عورت اور مرد کا مل کر بیٹھنا اور ایک جگہ بیٹھنا یہ درست نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں تو پھر وہی بات ہے کہ قرآن کی تعویل ہے. مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جیسا موقع ویسے کر لیجئے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو کیا کرو؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے ہی لوگوں پر سلام بھیجو. پھر آ گیا نا وہی حکم ادھر سے ادھر، اب لڑی بھی تو برابر کرنی تھی نا. یعنی جب بھی گھر میں آؤ تو سب سے پہلے سلام کرو، کیونکہ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً، یہ اللہ کی طرف سے مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے. تحیہ کہتے ہیں وقت ملاقات کا تحفہ. عرب لوگ اسلام کے حکم کے آنے سے پہلے جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے تھے حیّک اللہ، جیتے رہو. پھر اسلام نے اس کو السلام علیکم سے بدل دیا. تو یہاں مراد ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ کہ اب تم سلام کیا کرو، بابرکت ہے، دعا ہے، پاکیزہ چیز ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، آپ نے نوٹ کیا بار بار یہ آیت آئی ہے سورت میں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات. سورت بھی نور ہے اور آیتیں بھی بیجین ہیں، کھلی کلیئر، بالکل عمل کے قابل. کیوں آئی ہیں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو.